हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक उदास परी और जिन। अमन को तुरंत समझ आ गया कि अक्षत खुराना किसी खास बात का जिक्र कर रहा था। अमन ने अपना हाथ अक्षत के कंधे पर रखते हुए कहा, वो तो तुम हमारी शादी की वेडिंग प्लानर पर नजर रखे हुए हो। उसे वेडिंग प्लानर कहने की सोचना भी मत, अक्षत गुस्से से बोला, और वैसे भी मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। अक्षत की बात सुनकर अमन हैरान रह गया। उस पार्टी में मौजूद हर कोई अक्षत और अमन की बातें सुन रहा था। तारा परी ने सोनल परी के बारे में सारी बातें सुनी तो वो भी हैरान और परेशान हो गई। तारा परी ने सोनल परी को देखा। उसके लाल गाल देखकर तारा को समझ आ गया कि शायद सोनल भी अक्षत को पसंद करती है। अब तारा परी पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर कोई परीलोक की परी किसी इंसान को पसंद करती है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तारा परी तो वहां सिर्फ एक मिशन के तहत थी। उसने कभी किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा था, लेकिन सोनल परी जानबूझकर किसी इंसान के साथ रिश्ता रखना चाहती थी। ये सोनल परी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला था। सोनल परी भी हैरान थी। वो अक्षत को वहां से टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके मन में अक्षत के लिए भावनाएं थीं। लेकिन अमन का तारा के साथ बर्ताव सुनकर उसका दिल अब किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर रहा था। भले ही अमन इंसान नहीं था, फिर भी सोनल परी के मन में एक अलग तरह की असुरक्षा आ गई थी। उसने अमन और अक्षत के पास जाकर कहा, अमन सर, हल्दी का समय हो गया है। मुझे लगता है कि आपको हल्दी का फंक्शन शुरू करना चाहिए। वो वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी अक्षत ने सोनल परी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम ये नौकरी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी एक बार की बात समझ में नहीं आई थी? अक्षत का बेबाक कहना सोनल परी को हैरान कर गया। उसने कहा, मैंने आपको कोई कसम वादे नहीं किए हैं कि मैं आपके कहने से काम छोड़ दूँ, और वैसे भी ये मेरा डिसीजन है और मैं यहाँ काम करके खुश हूँ, तो मुझे किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं यही काम करूँगी। सोनल परी का जवाब सुनकर अक्षत हैरान हो गया। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि सोनल यहाँ उसके अद्वेषी अमन राठौर के यहाँ काम करे। वो चाहता था कि सोनल उसके पास रहे, उसके साथ रहे, क्योंकि वो सोनल को बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन अब सोनल का जवाब सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन फिलहाल वो यहाँ हल्दी के फंक्शन में शामिल होने आया था, इसलिए वो यहाँ कोई विवाद नहीं पैदा कर सकता था। जल्दी ही अमन तारा परी के साथ जाकर बैठ गया और अमित सीधे धरा के पास जाकर बैठ गया। करिश्मा जी ने दोनों की हल्दी लगाना शुरू कर दी। वहीं काली शक्ति का मालिक अमित बार बार तारा परी को देख रहा था। तारा समझ गई थी कि अमित उसे घूर रहा है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो खुद थोड़ी उदास थी। कुछ ही देर में सभी फंक्शन शुरू हो गए। मल्लिका को जब पता चला कि अमन तारा से हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी सब करना चाहता है, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो गुस्से से लाल हो गई थी। वो वहां खड़े रहना अब संभव नहीं था, क्योंकि वो एक बार और अमन को तारा के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो वहां से गायब हो गई। खुशनुमा माहौल में दोनों जोड़ों का हल्दी फंक्शन पूरा हुआ। इस बीच तारा ने एक बार भी अमन को नहीं देखा। बीच बीच में अमन ने उसके हाथ पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन तारा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अमन समझ गया था कि उसकी पत्नी उससे नाराज है। उसे इस बात का अफसोस भी था, लेकिन उसे जिन महाराज होने का घमंड भी था। वो सोचने लगा कि वो एक जिन महाराज है, और अगर वो अपनी पत्नी पर काबू नहीं रख सकता तो भला वो जिन्नों को कैसे काबू करेगा। इसलिए उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जल्दी ही ग्रैंड हल्दी फंक्शन पूरा हो गया। सभी के लिए खाना तैयार हो चुका था। सारा काम पूरा होने के बाद सोनल परी गार्डन से सारी व्यवस्था हटवाने लगी। उसने सभी नौकरों को निर्देश देना शुरू कर दिया। बाकी सभी मेहमान जा चुके थे और घर वाले अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए थे, लेकिन सोनल परी अकेले गार्डन में रह गई। वो सारा काम नौकरों की निगरानी में करवाने लगी। तभी सोनल परी को लगा कि उसे कोई घूर रहा है। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसके ठीक बगल में उसे अक्षत खुराना दिखाई दिया, जो कब से सोनल परी को ही देख रहा था। सोनल परी ने सहज तरीके से कहा, आप यहाँ हैं, मुझे लगता है कि आपको चले जाना चाहिए। सभी मेहमान जा चुके हैं। इस तरह से आखिर तक रुकना शायद आपकी इमेज के लिए ठीक नहीं है, और ये आपको शोभा भी नहीं देता। आखिर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और इस तरह से अपने प्रतिद्वंदी के यहाँ उसकी पार्टी में शामिल होने के बाद आप आखिर तक रुके हुए हैं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। सोनल परी के कहने पर अक्षत थोड़ा सा उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने सोनल परी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझे नापसंद करने का नाटक क्यों कर रही हो? मुझे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अक्षत खुराना, तुम अब जिद बन चुकी हो। अक्षत खुराना तुम्हें हर हाल में पाकर रहेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। सोनल परी ने अक्षत की दीवानगी और पागलपन देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गई। उसने तो अक्षत को इस तरह का कोई मौका ही नहीं दिया था कि वो उससे इस तरह बातें करे, लेकिन अचानक अक्षत खुराना को आखिर हुआ क्या है? वो इस तरह उससे बातें क्यों कर रहा था? इससे पहले कि सोनल परी कुछ समझ पाती, अक्षत के होंठ उसकी गर्दन पर चलने लगे। अब सोनल परी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो खुद कब से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन अब अक्षत का उसके करीब होना, उसे चूमना उसके पेट में गुदगुदी कर गया। उसकी हालत काफी अजीब हो रही थी। उसका एक दिल कर रहा था कि अक्षत को अपने से दूर कर दे, लेकिन दूसरा दिल कर रहा था कि वो आज पूरी तरह से अक्षत की बाहों में खो जाए और उसके साथ हर तरह की सीमाएं पार करे। लेकिन तभी अक्षत ने थोड़ी देर उसे चूमने के बाद उसे छोड़ दिया और कहा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इस तरह से मुझे खुद को चूमने भी नहीं देने देती। अब तुम्हारी मर्जी है। अक्षत खुराना तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वो अपनी मोहब्बत को ज्यादा समय नहीं देगा, तो तुम्हें जल्द मेरी जिंदगी में वापस लौट कर आना होगा। एक और बात, तुम्हें इस नौकरी से भी इस्तीफा देना होगा और सीधे मेरी जिंदगी में आना होगा। ऐसा कहकर अक्षत मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब सोनल परी को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अक्षत को क्यों नहीं रोका जब वो उसे चूम रहा था। उसे रोकना चाहिए था, उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। अक्षत उसे चूम कर जा चुका था और उसके मन में एक अलग तरह के अरमान भी जाग गए थे। वहीं दूसरी ओर तारा अपने कमरे में आ गई थी और कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलने के बाद जैसे ही तारा बिस्तर पर सोने के लिए आई, अचानक अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। तारा काफी हैरान हुई और अमन को देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तारा के कहने पर अमन गुस्सा सा हो गया और बोला, व्हाट यू मीन छोड़ो तुम्हें? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें प्यार करके गले लगाकर सोना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत बात है? तुम्हें मेरे पास आना होगा, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी।
तारा काफी परेशान थी कि अमन उसके साथ कितने लापरवाह तरीके से बर्ताव कर रहा था, जबकि तारा कितनी गुस्से में थी। क्या अमन को उसकी नाराजगी और गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था? क्या अमन की नजरों में उसके गुस्से की कोई कीमत नहीं थी? तारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अमन के हाथों को झटकते हुए कहा, आप ये फालतू की बकवास बंद कीजिए मिस्टर राठौर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपको हो क्या गया है। आप क्यों इतना पागलपन का बर्ताव कर रहे हैं? क्या कोई अपनी पत्नी को इस तरह ट्रीट करता है? जब मन किया शारीरिक संबंध बना लिया, जब मर्जी उसके साथ जबरदस्ती कर ली। क्या आपको इतने बड़े जिन महाराज होकर ये सब शोभा देता है? तारा खुद को रोक नहीं पाई और जो कुछ भी उसके मुंह में आ रहा था वो अमन को बोल रही थी। तभी अचानक अमन उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे पता है कि मेरी प्यारी खूबसूरत पत्नी तारा नाराज है, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं जब जब तुम्हारे करीब आता हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाता। मेरा यकीन मानो तारा, मैं तुम्हें सपने में भी किसी तरह की खरोच तक देने के बारे में नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। अब तारा को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि काली शक्तियों का मालिक अमित, जो वहां रह रहा था, धीरे धीरे अपने दानव को अमन के ऊपर हावी करना शुरू कर चुका था। क्या तारा वक्त रहते अमन को पहचान लेगी और उस दानव से उसे बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।